अक्सर जब हम दुनिया के बनने की कहानी के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही विशाल और मतलब ब्रह्मांडीय घटना होगी।
हाँ बिल्कुल, एकदम बड़े पैमाने की घटना।
सही कहा, मतलब जैसे कोई बहुत दूर से एक भव्य नज़ारा देख रहा हो। तारे बन रहे हैं, आकाश गंगाएं आकार ले रही हैं।
ओ, एक सर्वशक्तिमान आवाज गूंजती है और सब कुछ बस मतलब अस्तित्व में आ जाता है।
बिल्कुल, और ये नज़ारा बहुत ही विस्तृत, एकदम सटीक और बेदाग लगता है।
हाँ, एक ऐसा दृष्टिकोण जो बहुत ही व्यापक है, जहां हर चीज एक भव्य योजना के तहत अपनी जगह पर बैठती है।
ये पूरी व्यवस्था हमें यह महसूस कराती है कि ब्रह्मांड एक गणितीय सटीकता के साथ चल रहा है।
लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में, जो कि एक गहरा अध्ययन है, हम कुछ बहुत ही अलग देखने वाले हैं। उत्पत्ति यानी जेनेसिस की पुस्तक पढ़ते हुए ये जो नज़ारा है, ये अचानक पूरी तरह से बदल जाता है।
हाँ, एकदम से बदलाव आता है। उस अनंत ब्रह्मांड से ध्यान हटकर एक छोटे से बगीचे, थोड़ी सी नम मिट्टी और मतलब एक इंसान की सांस पर आ टिकता है।
बिल्कुल, और ये जो नजरिया बदलने की कला है, वही आज हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है।
तो आज हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज द्वारा दिए गए एक बेहद दिलचस्प लेक्चर, जिसका नाम द गार्डन स्टोरी है, उसके स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं।
हाँ, जो कि जेनेसिस के दूसरे और तीसरे अध्याय पर आधारित है।
सही, और हमारा मकसद ये समझना है कि जेनेसिस एक और जेनेसिस दो की कहानियों में बुनियादी अंतर क्या हैं।
और साथ ही प्राचीन हिब्रू भाषा के शब्दों का जो दिलचस्प खेल है, वो हमें क्या बताता है?
बिल्कुल, और ये भी कि मनुष्य की उत्पत्ति, उसके शरीर और उसकी इच्छाओं के बारे में ये प्राचीन स्रोत हमें क्या नया दृष्टिकोण देता है। तो सीधे इस विरोधाभास पर आते हैं।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं।
जेनेसिस एक और दो के बीच ये जो कहानी कहने का तरीका बदलता है, ये मतलब ये कोई गलती नहीं लगती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही गहरा वैचारिक उद्देश्य है।
अच्छा,
हाँ, इसे समझने के लिए इन दोनों अध्यायों की गति और उनके स्वरूप का विश्लेषण करना जरूरी है।
तो जेनेसिस एक का स्वरूप कैसा है?
जेनेसिस एक जो है, वो बहुत ही कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसकी गति बहुत तेज है।
दिन गुजरते हैं और हर दिन के साथ एक नया निर्माण होता है।
बिल्कुल, यहाँ एक तरह की समरूपता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ईश्वर के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो है एलोहिम।
एलोहिम, इसका क्या अर्थ होता है?
ये शब्द एक सर्वशक्तिमान पारलौकिक ईश्वर को दर्शाता है, एक ऐसा ईश्वर जो सृष्टि से बिल्कुल अलग और ऊपर है।
मतलब वो सिर्फ आदेश देता है और ब्रह्मांड बन जाता है।
एकदम सही।
तो क्या हम इसे एक एक कैमरे के लेंस की तरह देख सकते हैं?
कैमरे के लेंस की तरह मतलब कैसे?
जैसे जेनेसिस एक एक वाइड एंगल सैटेलाइट व्यू है, जो पूरी पृथ्वी, आसमान और समुद्र को एक साथ दिखाता है।
हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है।
लेकिन जेनेसिस दो में आते ही वो कैमरा अचानक जूम इन करके पोर्ट्रेट मोड में चला जाता है,
बिल्कुल।
जहां पृष्ठभूमि पूरी तरह से धुंधली हो जाती है और सारा फोकस सिर्फ एक इंसान और एक बगीचे पर आ जाता है।
हाँ, एकदम सटीक। और इस जूम इन तकनीक से कहानी का पूरा मिजाज ही बदल जाता है।
गति भी धीमी हो जाती होगी।
हाँ, जब हम जेनेसिस दो और आगे अध्याय चार तक जाते हैं, तो गति एकदम धीमी हो जाती है। सारा ध्यान सिर्फ उस छठे दिन पर केंद्रित हो जाता है, जब इंसान का निर्माण हुआ था।
और शायद यहाँ भाषा भी बदलती है।
बिल्कुल, यहाँ ईश्वर के लिए एलोहिम के साथ एक नया नाम जुड़ जाता है, यावे एलोहिम।
यावे एलोहिम, ओ, ये यावे नाम तो बहुत सी प्राचीन वार्ताओं में आता है।
हाँ, आता है।
लेकिन यहाँ इसका जुड़ना शायद किसी खास रिश्ते की ओर इशारा करता है।
सही पकड़ा आपने। यहाँ श्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करता है। यावे जो है, वो इसराइल के अनुबंधित ईश्वर यानी कवनेंट गॉड का व्यक्तिगत नाम है।
कवनेंट गॉड,
हाँ,
मतलब एक समझौता।
प्राचीन संदर्भ में कोवनेंट या अनुबंध का मतलब महज कोई कागजी समझौता नहीं होता था।
तो फिर क्या होता था?
ये एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत और घनिष्ठ रिश्ता है, जैसे एक विवाह का बंधन होता है।
अच्छा, इस तरह का घनिष्ठ रिश्ता।
हाँ, तो जेनेसिस एक का एलोहिम, अगर वो ईश्वर है जो दूर से आकाश गंगाएं बनाता है, तो जेनेसिस दो का यहवे एलोहिम वो ईश्वर है जो जमीन पर उतरकर अपने हाथों से काम करता है।
अरे वाह। और ये जमीनी काम हमें सबसे अंतरंग दृश्य दिखाता है जहां भाषा अचानक बहुत ही मानवीय या कहें एंथ्रोपोमॉर्फिक हो जाती है।
बिल्कुल।
जैसे जेनेसिस दो के शुरुआती श्लोकों में बताया गया है कि जमीन से कोहरा या जलधारा निकलकर सतह को सींच रही थी।
हाँ, जमीन को तैयार किया जा रहा था।
यानी जमीन तैयार थी लेकिन उस पर काम करने वाला कोई इंसान नहीं था।
और यहीं पर ईश्वर को किसी दूर बैठे राजा की तरह नहीं दिखाया गया है।
तो कैसे दिखाया गया?
उन्हें एक कुम्हार की तरह चित्रित किया गया है।
एक कुम्हार?
हाँ, स्रोत के अनुसार जेनेसिस 2:7 कहता है कि ईश्वर ने जमीन की मिट्टी से इंसान को गढ़ा।
यहाँ मिट्टी या धूल का मतलब कोई सूखा पाउडर तो नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब पानी से नम हुई मिट्टी या गारा है जिसे कुम्हार आसानी से आकार दे सकता है।
मतलब ईश्वर स्वयं उस मिट्टी के ऊपर झुककर उसे अपने हाथों से गढ़ते हैं।
एकदम सही। और यहीं पर हिब्रू भाषा का वो शानदार वर्ड प्ले सामने आता है।
हाँ, वो वर्ड प्ले मुझे निजी तौर पर बहुत दिलचस्प लगा।
है ना? मनुष्य के लिए जो हिब्रू शब्द है वो है आदम, और जिस जमीन या मिट्टी से उसे बनाया गया है उसके लिए शब्द है अदामा।
आदम और अदामा। हाँ, ये सिर्फ एक भाषाई समानता नहीं लगती मुझे, ये इंसान की जमीनी हकीकत को दिखाता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम कोई अलौकिक प्राणी नहीं है, हम उसी जमीन से निकले हैं जिस पर हम चलते हैं।
और ये शब्द खेल इंसान की कोमलता और उसकी सीमाओं को भी तो रेखांकित करता है।
हाँ, जिसे हम फ्रेजिलिटी कहते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर है। उसका अस्तित्व पूरी तरह से उस जमीन पर निर्भर है जिससे वो बना है। लेकिन सिर्फ मिट्टी होने से कोई जीवित नहीं हो जाता।
तो फिर जीवन कैसे आता है?
कहानी का अगला हिस्सा बताता है कि मिट्टी की मूरत गढ़ने के बाद ईश्वर ने उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी।
जीवन की सांस?
हाँ, और जब वो सांस उस बेजान मिट्टी में प्रवेश करती है तब जाकर मनुष्य एक जीवित प्राणी बनता है।
और हिब्रू में इसके लिए कोई खास शब्द है?
हाँ, इसके लिए नफेश शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
नफेश। ओह, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
कैसे?
क्योंकि अगर हम आधुनिक समाज की सोच को देखें तो हम अक्सर ग्रीक दर्शन से बहुत प्रभावित होते हैं।
हाँ, ये तो है।
हम मानते हैं कि इंसान के अंदर एक अमर आत्मा होती है, मतलब एक इममटेरियल इटर्नल सोल, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है।
बिल्कुल।
हम शरीर को एक खोल या कपड़े की तरह देखने लगे हैं जिसे आत्मा ने कुछ समय के लिए पहना हुआ है। लेकिन इस प्राचीन हिब्रू स्रोत के अनुसार क्या नफेश का मतलब वही है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन हिब्रू सोच में शरीर और आत्मा के बीच ये जो विभाजन है ये मौजूद ही नहीं है।
अरे
हाँ, नेफिश का मतलब कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसे शरीर से अलग किया जा सके।
तो फिर नेफिश का असली मतलब क्या है?
नेफिश का मतलब है पूरा व्यक्ति, एक संपूर्ण जीवित प्राणी या होल बीइंग।
ओ, इसका मतलब इंसान स्वभाव से नश्वर है।
एकदम सही। जब शरीर और जीवन की सांस मिलते हैं तब नेफिश बनता है।
ये है कि हमारा अस्तित्व पूरी तरह से हमारे भौतिक शरीर और उस सांस के जुड़ाव पर निर्भर है। ये तो आधुनिक सोच से बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल अलग है। इस स्रोत के अनुसार हम एक शरीर रखते नहीं हैं, हम खुद एक शरीर हैं।
हम खुद एक शरीर हैं। ये विचार तो भौतिक शरीर को एक अजीब सी गरिमा और सम्मान देता है।
हाँ, शरीर कोई बुरी चीज नहीं है जिससे छुटकारा पाना है। ये शरीर को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। हमारा भौतिक अस्तित्व हमारी पहचान का एक अभिन्न अंग है। अगर वो ईश्वरीय सांस निकाल ली जाए तो व्यक्ति सिर्फ एक मृत निफेश रह जाता है।
मतलब शरीर को नकारना इस कहानी के मूल संदेश के बिल्कुल खिलाफ है।
एकदम खिलाफ है।
अच्छा, ये शरीर और अस्तित्व की बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन इस जूम इन लेंस में एक नई समस्या उभर कर आती है।
कौन सी समस्या?
पहली बार इस पूरी रचना में कुछ ऐसा होता है जिसे अच्छा नहीं कहा गया है।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जेनेसिस 1 में हर निर्माण के बाद ये कहा गया था कि सब कुछ अच्छा है या बहुत अच्छा है।
लेकिन जेनेसिस 2 में?
जेनेसिस 2 में ईश्वर कहते हैं मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है।
तो ये अकेलेपन को सृष्टि की पूर्णता में एक कमी के रूप में देखता है।
बिल्कुल। ये दर्शाता है कि इंसान मूल रूप से सामाजिक प्राणी है.
सोशल बीइंग्स.
हाँ, उन्हें समुदाय, रिश्ते और एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ाव के लिए बनाया गया है.
और शायद मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए भी ये जरूरी था.
एकदम सही. इसलिए एक अनुकूल सहायक बनाने का निर्णय लिया जाता है.
और इस स्त्री के निर्माण की प्रक्रिया जानवरों के निर्माण से बिल्कुल अलग है.
हाँ, बहुत अलग है.
जानवर मिट्टी से बने थे, लेकिन यहाँ ईश्वर मनुष्य को एक गहरी नींद में डाल देते हैं.
ओ, ये गहरी नींद वाला हिस्सा बहुत प्रतीकात्मक है.
पता है, ये गहरी नींद मुझे बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कोई जादूगर अपनी सबसे बड़ी ट्रिक से पहले पर्दा गिरा देता है.
अरे वाह, ये बहुत ही शानदार उपमा है.
है ना, मनुष्य ये नहीं देख पाता कि स्त्री कैसे बनी, जिससे स्त्री का रहस्य और उसकी महिमा बरकरार रहती है. वो जानवरों की तरह मिट्टी से नहीं बल्कि खुद मनुष्य के हिस्से से बनी है.
बिल्कुल, ये पर्दा गिरने वाली बात यहाँ के संदर्भ को बहुत अच्छे से समझाती है. जब मनुष्य गहरी नींद में होता है, तब ईश्वर एक ठेकेदार या निर्माता की तरह उसके शरीर की एक पसली निकालते हैं,
या सटीक हिब्रू अनुवाद में कहें तो उसके शरीर के एक हिस्से को निकालते हैं.
हाँ, एक हिस्से या साइड को,
और उससे स्त्री का निर्माण करते हैं.
और फिर जब मनुष्य जागता है,
जब मनुष्य नींद से जागकर स्त्री को देखता है, तो वो तुरंत पहचान लेता है कि ये उसी का एक हिस्सा है.
हाँ, वो कहता है, ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है.
बिल्कुल, और यहाँ भाषा फिर से एक पुल का काम करती है. यहाँ भी एक वर्ड प्ले है. मनुष्य के लिए हिब्रू शब्द है इश,
और स्त्री के लिए शब्द है इश्शा.
इश और इश्शा, ये भाषाई समानता दर्शाती है कि दोनों एक ही मूल से हैं. दोनों के बीच एक गहरी समानता और एकता है.
एकदम सही. और डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि ये कहानी मानव कामुकता और शरीर को ईश्वर का एक सुंदर आशीर्वाद मानती है.
मतलब सेक्सुअलिटी को सकारात्मक रूप में देखा गया है.
हाँ, मानव इतिहास में हम अक्सर शरीर को लेकर दो चरम सीमाओं को देखते हैं.
कौन सी दो सीमाएं?
एक तरफ वैराग्य या एस्केटासिज्म है, जो ये मानता है कि आध्यात्मिक होने के लिए शरीर को कष्ट देना और इच्छाओं को मारना जरूरी है.
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ सुखवाद या हेडोनिज्म है, जो मानता है कि इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और शरीर सिर्फ सुख भोगने के लिए है.
तो ये स्रोत इन दोनों के बारे में क्या कहता है?
ये स्रोत इन दोनों ही विचारधाराओं का कड़ा विरोध करता है.
तो अगर इंसान सामाजिक है, उसका शरीर महत्वपूर्ण है और उसकी इच्छाएं स्वाभाविक हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि इन इंसानों को किस माहौल में रखा गया था.
हाँ, अब हम भूगोल की ओर बढ़ते हैं.
हाँ.
हम अदन के बगीचे यानी गार्डन ऑफ ईडन के भूगोल पर आते हैं. यहाँ भी ये जूम इन तकनीक नजर आती है.
बिल्कुल, विशाल पृथ्वी से जमीन, फिर अदन नामक क्षेत्र और अंत में उस विशेष बगीचे तक.
इस भूगोल को प्रमाणिक बनाने के लिए कहानी में चार नदियों का जिक्र किया गया है.
हाँ,
दजला और फरात नदियाँ, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में बहती थीं और आज भी जानी जाती हैं.
टिग्रिस और यूफ्रेट्स.
सही, लेकिन इनके साथ दो अन्य नदियों पिशोन और गिहोन का भी जिक्र है.
इनका आज कोई स्पष्ट ऐतिहासिक या भौगोलिक सुराग नहीं है.
बिल्कुल नहीं है.
तो एक प्राचीन लेखक दो जानी मानी नदियों को दो अनजान नदियों के साथ क्यों मिलाएगा? क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया बनाने का तरीका था?
प्राचीन दुनिया के लेखकों के लिए भूगोल बताने का तरीका आज के गूगल मैप्स जैसा नहीं था.
उनका नजरिया अलग था.
हाँ, ज्ञात नदियों का नाम लेकर वे सुनने वालों को ये बता रहे थे कि ये घटना किसी वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र में हुई थी.
अच्छा.
लेकिन अज्ञात नदियों को शामिल करके वे अदन को पूरे विश्व के केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रहे थे.
मतलब ये दुनिया का वो मूल स्रोत था जहाँ से सारा जीवन बहता है.
बिल्कुल, और इस बगीचे के बिल्कुल केंद्र में खाने पीने की चीजों के बीच दो बहुत ही रहस्यमयी पेड़ मौजूद थे.
पहला जीवन का वृक्ष, जो समझ में आता है हर संस्कृति में अमरता की लालसा रही है.
हाँ, ट्री ऑफ लाइफ.
ये पेड़ प्रतीक है कि इंसान जन्म से अमर नहीं है और अमरता उसे बाहर से ईश्वर से एक उपहार के रूप में मिलनी थी.
सही कहा.
लेकिन दूसरा पेड़ हमेशा से थोड़ा उलझाने वाला रहा है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष. ज्ञान या बुद्धिमत्ता को एक खतरे के रूप में क्यों देखा गया?
डॉक्टर मैथ्यूज के विश्लेषण के अनुसार प्राचीन मध्य पूर्वी साहित्य में भले और बुरे का ज्ञान मूल रूप से संपूर्ण बुद्धिमत्ता का प्रतीक है.
पूरी विज़डम?
हाँ, प्राचीन काल में ज्ञान और लंबा जीवन, ये दो चीजें थीं जिनकी सबसे ज्यादा लालसा की जाती थी.
तो क्या स्रोत ये कहता है कि ज्ञान की इच्छा होना बुरी बात है?
नहीं, स्रोत ये नहीं कहता. भोजन, काम और ज्ञान की इच्छाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी हैं।
तो फिर समस्या कहाँ है?
समस्या तब शुरू होती है जब इंसान ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना सिर्फ अपनी शर्तों पर इन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है।
यानी जब ये स्वाभाविक इच्छाएं इंसान पर हावी हो जाती हैं, तो वे जुनून बन जाती हैं, ऑब्सेशन बन जाती हैं।
बिल्कुल। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज के समय में देखें तो इंसान लगातार और अधिक इन्फॉर्मेशन, डेटा और ज्ञान के पीछे भाग रहा है।
हाँ हाँ, हर किसी को सब कुछ जानना है। साथ ही एंटी एजिंग और लंबे जीवन को लेकर एक जुनूनी दौड़ लगी हुई है। क्या ये कहानी हमें चेतावनी नहीं दे रही कि जब हमारी बुनियादी इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं?
बिल्कुल सही। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो सीमित है और वो सब कुछ खुद नियंत्रित करना चाहता है, तो यही ज्ञान और इच्छाएं उसे नुकसान पहुंचाती हैं। कहानी दर्शाती है कि इंसान को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना था, न कि इच्छाओं को इंसान पर नियंत्रण करने देना था।
इन सभी दार्शनिक और प्रतीकात्मक विचारों पर चर्चा करने के बाद एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सवाल सामने आता है।
हाँ, जो अक्सर पूछा जाता है,
क्या इस प्राचीन स्रोत के अनुसार ये कहानी यानी आदम और हव्वा सच में हुए थे, या ये सिर्फ एक कविता है, एक रूपक है जिसे दार्शनिक बातें समझाने के लिए गढ़ा गया था?
इस विषय पर विद्वानों के बीच काफी बहस होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस बात पे ध्यान केंद्रित करें कि डॉक्टर मैथ्यूज के अनुसार जेनेसिस के मूल लेखक का इरादा क्या था, तो उनका निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है।
वो क्या है?
वो ये है कि लेखक ने इन्हें वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तियों के रूप में ही प्रस्तुत किया है।
अच्छा, कई लोग इसे सिर्फ एक रूपक या मेटाफर मानते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार ऐसा निष्कर्ष निकालने के पीछे मुख्य आधार क्या है?
इसके मुख्य रूप से दो कारण दिए गए हैं।
पहला कारण क्या है?
पहला है वंशावली के शीर्षक, जिन्हें हिब्रू में टोलेदोत कहा जाता है।
टोलेदोत।
हाँ, अध्याय 1 से 11 तक की कहानियाँ इन्हीं शीर्षकों के माध्यम से सीधे तौर पर अध्याय 12 से 50 तक जुड़ती हैं।
और अध्याय 12 से 50 में क्या है?
वो अब्राहम का इतिहास है, और अब्राहम को ऐतिहासिक रूप से एक वास्तविक व्यक्ति माना जाता है।
तो मतलब प्राचीन लेखकों ने जानबूझकर इसे अब्राहम के इतिहास से जोड़ा है।
बिल्कुल। चूंकि लेखक ने एक ही साहित्यिक ढांचे से दोनों हिस्सों को जोड़ा है, इससे संकेत मिलता है कि लेखक पहले हिस्से को भी वास्तविक इतिहास मानता था।
यानी ये आधुनिक इतिहास की किताब की तरह नहीं लिखी गई है, बल्कि ये प्राचीन दुनिया का तरीका था इतिहास बताने का, जिसमें प्रतीकों और वंशावली का एक साथ इस्तेमाल होता था। सही,
एकदम सही। और दूसरा कारण जो इस स्रोत में दिया गया है, वो इन्हीं वंशावलियों से जुड़ा है। हम देखते हैं कि अध्याय 5 और 11 में आदम से लेकर नूह तक, और फिर नूह से लेकर अब्राहम तक एक सीधा संबंध स्थापित किया गया है।
आधुनिक दुनिया में हम वंशावली को शायद सिर्फ एक पारिवारिक पेड़ या डीएनए टेस्ट की तरह देखते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन प्राचीन काल में इसका महत्व कुछ और था, है ना?
हाँ, प्राचीन काल में वंशावलियां सिर्फ नाम गिनवाने के लिए नहीं होती थी, उनका उपयोग ऐतिहासिक निरंतरता दिखाने के लिए किया जाता था।
हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी।
सही। प्राचीन साहित्य को पढ़ते समय हमें ये समझना होगा कि वे इतिहास को आज के आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से दर्ज नहीं करते थे,
जहाँ सिर्फ तारीखें और तथ्य होते हैं।
हाँ, वे घटनाओं को उनके गहरे अर्थ और प्रतीकों के साथ जोड़कर बताते थे।
लेकिन स्रोत के अनुसार इसका मतलब ये नहीं था कि वे उन घटनाओं के मूल अस्तित्व को नकार रहे थे।
बिल्कुल नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन लेखकों के लिए इतिहास बताने का तरीका अलग था, लेकिन उनके लिए आदम उतने ही वास्तविक थे जितने की बाद के ऐतिहासिक पात्र।
हाँ,
ये पूरा दृष्टिकोण सच में हमारी आधुनिक सोच को चुनौती देता है।
बहुत बड़ी चुनौती देता है, और शायद यही कारण है कि ये स्रोत आज भी इतना अध्ययन किया जाता है।
ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसान सिर्फ एक चलता फिरता दिमाग नहीं है।
बिल्कुल। हम मांस, खून, सांस और रिश्तों से मिलकर बने हैं। हमारी सीमाएं हैं, हम जमीन से जुड़े हैं। कि हम तकनीक या अथाह ज्ञान से अपनी हर सीमा को पार कर सकते हैं।
लेकिन ये प्राचीन कहानियां में वापस उसी अदामा यानी मिट्टी पर लाखड़ा करती है।
सही कहा।
शुरुआत में हमने उस चौड़े कैमरे के लेंस और फिर जूम इन होकर उस नम मिट्टी पर फोकस करने की बात की थी।
हाँ।
जब ये जूम इन होता है तो हमें एहसास होता है कि हम कितने नाजुक हैं। हम एक शरीर और एक सांस का जोड़ मात्र हैं।
और जब हम अपनी इस बुनियादी जमीनी हकीकत को भूल जाते हैं, तो शायद हम खुद को ही भूल जाते हैं।
बिल्कुल। तो सीखने वालों के लिए आज ये सोचने का विषय है, अगर इंसान सचमुच अदामा मतलब मिट्टी से बना है, और हमारे जीवन की ये सांस सिर्फ एक उधार की सांस है, तो सोचिए, वर्तमान जीवन में वो कौन सी अच्छी इच्छा है जो आज हम पर पूरी तरह से राज कर रही है?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या हमने ज्ञान, सफलता या लंबे जीवन की अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने दिया है? और क्या ये भूल जाना कि हम कितने सीमित और नाजुक हैं आधुनिक युग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? इस पर विचार कीजिएगा।